पिछले चंद दिनों से उन सात लोगों का तस्करा किया जा रहा है जिनके बारे में हदीस पाक में आया, तो कयामत के दिन सात लोगों को अर्श का साया मिलेगा जब कोई और साया नहीं। कयामत के दिन इस आप किस्म के लोग अल्लाह के मुकर्रर होंगे, अल्लाह के खास मेहमान होंगे, अरबों लोग खड़े में देख रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कयामत के दिन कि अरबों खरबों लोग धूप में है, सूरज के नीचे है, और ये लोग इनको अल्लाह ने साया भी दिया, पर अल्लाह ने इतना इकराम किया कि अपने अर्श का सहारा। इनमें से पांच लोगों का तस्करा हम कर चुके, एक आदिल बादशाह, एक वो बादशाह जिसने अदल और इंसाफ किया, दूसरा वो शख्स जिसने जवानी में इबादत की, तीसरा वो शख्स कि जो तो मस्जिद से बाहर था मगर उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ, और चौथे वो दो जिन्होंने अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत की। और कल की मजलिस में हमने पांचवें बंदे का तस्करा किया, और ये पांचवा वो शख्स था, पांचवा वो बंदा कि जिसको किसी खूबसूरत औरत ने सी वजाहत औरत ने दावत दी गुनाह की, और इसने आगे से जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये वो पांच लोग हैं, सात में से पांच लोग जिनको अल्लाह ने कयामत के दिन अर्श का साया देना है जब और कोई साया नहीं। आज की इस मजलिस में इन सात में से छठे शख्स का तस्करा करना मकसूद है, जिनको कयामत के दिन अल्लाह ने अर्श का साया देना है जब कोई और साया नहीं होगा। और ये वो शख्स है कि वो सदका ऐसे करेगा, सदका इतने छुप के करेगा कि अगर दाएं हाथ से सदका करेगा तो बाएं को भी खबर नहीं। सदका खुद बजात खुद करना एक बहुत बड़ी नेकी है, बल्कि इतनी बड़ी नेकी कि जिस शख्स को सदका करने का शौक नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अभी उसके अंदर नेकी आई ही नहीं है। नेकी आने का सबसे बड़ा जरिया इंसान के अंदर सदका करने का, दूसरों पे अपना माल खर्च करने का शौक। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा, तुम हरगिज नेक नहीं बन सकते जब तक कि तुम उस चीज को खर्च ना कर दो जिससे तुम बहुत कर। तो एक तो सदका करना बहुत बड़ी नेकी है, सदका करने वाला ही असल में नेक होता है, और सदका करने वाले की जिंदगी पुरसकून होती है। अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार, जो अपना माल खर्च करते हैं रात में और दिन में सिर्रा वालानियतन, और जो छुप के भी खर्च करते हैं और लोगों के सामने भी खर्च करते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पे ना कोई खौफ होता है और ना ही वो गमगीन। तो देखिए सदका करना बजात खुद कितनी बड़ी नेकी, सदका करने वाला ही असल में नेक अल्लाह की निगाह में, और दूसरा ये कि जो सदका करता रहता है, तबीयत जिसकी सदका करने की है उसको इस जिंदगी में 100% सुकून मिलेगा। मगर सदका करने का ऊंचा दर्जा ये है कि इंसान सदका ऐसे करे कि किसी को पता ही न चले। कई मरतबा इंसान सदका करता है और उसकी नीयत ये होती है कि जब वो सदका करे तो लोग उसकी तारीफ करें कि देखो इसने कैसे खर्च किया। तो ये जो सदका खामोशी से करता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस अमल की तारीफ अल्लाह से चाहता है और किसी से नहीं चाहता। जब वो इस तरह से सदका करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत के दिन उसे अर्श का साया दे दिया। अल्लाह ने उसको अपने मुकर्रम तरीन लोगों में शामिल कर, जितने भी नेक आमाल हैं इनमें ये शर्त है कि करने वाले की नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए हो। नबी ने सलाम कि जिसने इबादत की लोगों को दिखाने के लिए, जिसने इबादत की लोगों को दिखाने के लिए तो उसने शिर्क कर लिया। ये छोटा गुनाह नहीं है रिया, ये दिखलावे के लिए इंसान ने कोई इबादत की तो मैं भी फरमा रही है गुनाह नहीं, ये शिर्क है। तो ये पक्की बात है कि जो इबादत खामोशी से करता है उसकी इबादत को अजर से। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि आप तिलावत कर रहे थे सूरह ताहा की, तिलावत करते करते और आपकी तिलावत बहुत खूबसूरत थी। तिलावत फरमा है करीब से एक बंदा गुजरा, तिलावत करते करते आपको ये महसूस हुआ कि करीब से एक बंदा गुजरा है और वो कुछ देर के लिए खड़ा हो गया मेरी तिलावत सुन रहा है, तो आपको एहसास हो गया कि वो सुन रहा है और फिर वो आगे निकल गया और आप सूरे ताहा तिलावत करते रहे हत्ता कि आपने सूरे ताहा मुकम्मल कर। रात को जब आप आराम के लिए लेते हैं तो ख्वाब में आपको आपका नामा आमाल दिखाया गया और उस नामा आमाल में आपने देखा कि सूरह ताहा मौजूद है, बड़े खुश हुए, बड़े गौर से सूरह ताहा को आपने देखा तो उसमें से तीन चार आयतें जो थी वो गायब थी। ख्वाब में ही जिस फरिश्ते ने ये नामा आमाल देख के सामने रखा आपने उससे पूछा जी ये तीन चार आयतें भी मैंने पढ़ी थी ये मेरे नामा आमाल में है ही नहीं। उसने कहा कि जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये वो आयतें हैं जब ये आदमी करीब से गुजर रहा था आपके दिल में ये ख्याल आया कि ये मेरी तिलावत सुनकर बहुत ही मेरी मुझे पसंद कर रहा है, इस सोच पर अल्लाह ने ये आयतें आपके नाम आया बोल से लिखा। अल्लाह के नजदीक वो ही अमल कबूल है जो खालिसतन अल्लाह के लिए किया गया। कयामत के दिन अर्श का साया उसके लिए जो सदका ऐसे करेगा कि अगर दाएं हाथ से सदका करेगा तो इतनी खामोशी से इतना किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके अपने बाएं हाथ को भी पता नहीं चलेगा। काफी बात आज की बात अमल करते हैं। अबू उमेर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इस उम्र के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उनको उन अल्लाह वालों में से बनाया जो थे भी बड़े अल्लाह वाले वक्त के बड़े बुजुर्ग थे। मगर इसके साथ साथ अपने मुल्क के सबसे अमीर तरीन लोगों में से भी थे। तो आमतौर पर अल्लाह वाले तारीख यही बताती है कि बहुत कोई अमीर कबीर लोग नहीं होते, मगर कुछ अल्लाह वाले ऐसे जरूर गुजरे हैं कि अल्लाह ने उनको मार्फत भी अता फरमाई, माल भी अता फरमाई। तो अबू उमैर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह थे, मुल्क के अंदर कहना आ गया तो गरीब लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ खाए, कितने लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। वक्त का बादशाह था, एक आदमी था, उसने कोशिश की कि मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो मुल्क के जो अमीर तरीन लोग थे उनसे आपने, उस बादशाह ने मदद मांगी कि जी मुल्क में कहते अल्लाह ने आप लोगों को दिया है तो सबका कीजिए, ताकि ये मुल्क की परेशानी आई है ये परेशानी। तो जो अमीर लोग थे उन्होंने खूब सदका किया। अबू उमैर मुजाहिद सदका खूब किया, बल्कि जितने भी अमीर लोगों ने सदका किया आपने इसमें सबसे ज्यादा बढ़ के सदका। तो इतना माल जमा हो गया कि ये मुश्किल वक्त था, ये कहर का वक्त था, ये टल गया, गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम। जब हालात नॉर्मल हो गए, बारिशें भी हो गई और सिस्टम नॉर्मल हो गया, तो बादशाह ने एक दिन दावत रखी उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने इस सारी मुहिम में मदद की। तो सारे जो अमीर लोग जिन्होंने सत्ता किया था उनको दावत दी गई। अबू उमैर मुजाहिद रहमतुल्लाह, तो बादशाह ने बड़ा पुरतकल्लुफ खाना उनको खिलाया और उसके बाद बादशाह ने खड़े होकर शुक्रिया अदा किया कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना इतना खर्च किया मुल्क की इस परेशानी को दूर करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा, खास तौर पे अबू उबैर मुजाहिद का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 2 लाख दिरहम दिए। और दिरहम जो है उस जमाने में चांदी के सिक्कों को सिक्के को कह रहे थे। 2 लाख दिरहम दिए। जैसे ही बादशाह ने ये कहा, अबू उमैर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक बात की माजरत करनी है कि ये 2 लाख दिरहम जो मैंने आपको दिए ये मेरे नहीं मेरे वालिद के हैं, और क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था तो ये 2 लाख दिरहम मुझे वापस चाहिए। जैसे उन्होंने ये कहा सारी महफिल का रंग बदल गया, बादशाह भी नाराज हो गया, ये क्या बात है, 2 लाख दिरहम गरीब लोगों के सदका करने के बाद जब वो खर्च हो गया तो आप कह रहे वापस दे दो। तो क्योंकि ऐसी महफिल थी कि जिसमें लड़ाई झगड़ा ऐसा लग नहीं रहा था, लड़ाई झगड़ा तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो बादशाह ने बात को मुकम्मल करते थे, सबका मूड खराब हो गया। बादशाह ने कहा ठीक है, फला दिन को आप मेरे पास आ जाए, जब तक मैं कोई इंतजाम करके रखता हूँ आपके 2 लाख दिरहम वापस दे। और उसके बाद जितने भी ये मुखय्यर हजरात जिन्होंने सदके किए थे, आशन सब होगा कि आज की महफिल का साथ। जो फला दिन बादशाह ने कहा था उस दिन अबू उमैर मुजाहिद रहमतुल्लाह बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा कि ये ले आपके 2 लाख दिरहम, आपने फिर हमें मुश्किल में डाल दिया, अगर आपको पता था कि ये आपके वालिद के हैं तो आप उस वक्त ही ना देते हमें। अबू उमैर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह सलामत, ये 2 लाख दिरहम बिल्कुल मेरे वालिद के ही है, मगर मेरे वालिद ने मुझे इजाजत दी है जहां खर्च करना चाहो कर सकता हूँ। आपसे ये 2 लाख दिरहम वापस इसलिए लिए कि आपने इतने सारे लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि मैंने ये 2 लाख दिरहम दिए हैं। मैं चाह रहा था कि इसका किसी को पता न चलता, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे वालिद के हैं, आप मुझे वापस करें। अब आप ये 2 लाख रख सकते हैं, अब सबको यकीन है कि मैंने वापस आपसे ले लिया। तो कितना शौक था सदका खामोशी से करने का कि लोग मुझे बुरा ही क्यों ना समझे, मगर मेरा सदका लोगों की आंखों से पहुंच तो कयामत के दिन साफ लोगों को अर्श का साया नसीब होगा। उसमें से एक वो होगा जो सदका इतनी खामोशी से करेगा कि दाएं हाथ से सदका करेगा तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होगी। ताला बेखूब सदका करने की भी तौफीक अता फरमाए और इखलास के साथ सदका करना नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सदका कर ले, आंखों को बंद कर ले, सदका दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बी अल अज़ीम اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.